नमस्कार।
CSIR CFTRI की अपनी पाक्षिक ऑडियो डाइजेस्ट थाली टेल्स में आपका स्वागत है। थाली टेल्स आपको पोषण, खाद्य अनुसंधान, स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा संबंधी उपयोगी जानकारी प्रदान करता है। तो लीजिए, प्रस्तुत है भाग एक, अंक 8, 14 जून 2019। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं कोको और चॉकलेट, एक मीठी सी कहानी चॉकलेट की, मीठी मीठी लालसा का रहस्य और विज्ञान चॉकलेट की रेशमी कोमलता का। तो लीजिए, प्रस्तुत है मिठास से भरा ये अंक।
कोको और चॉकलेट। आप यकीन करेंगे, 99% लोगों को चॉकलेट पसंद ही होती है और बाकी का 1% मजाक ही कर रहे हैं। चाहे किसी से भी पूछ लीजिए कि उनकी पसंदीदा मिठाई कौन सी है, आपको उत्तर चॉकलेट ही मिलेगा। हैरानी की बात तो ये है कि ना जाने कैसे ये कड़वा और विचित्र स्वादयुक्त पेय इतना लोकप्रिय हो गया। विश्व भर में लोगों को चॉकलेट इतनी पसंद है कि लोग किसी अन्य मिठाई के मुकाबले इसी का सेवन सबसे अधिक करते हैं। आखिर लोगों को चॉकलेट इतनी पसंद क्यों है? शायद इसका कारण ये है कि चॉकलेट मुंह में आते ही पिघल जाती है, जबकि साधारण तापमान में वह ठोस रहती है। चॉकलेट के इस गुण का श्रेय जाता है उसमें मौजूद कोको बटर को, जो कि एक प्रकार का फैट या वसा है। ये 25 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में ठोस रहती है और वहीं दूसरी तरफ शारीरिक तापमान यानी लगभग 35 डिग्री सेल्सियस में पिघल जाती है। इससे शक्कर और कोको बटर पिघलकर हमें इतने अच्छे स्वाद का अनुभव देते हैं और यही कारण है इसकी लोकप्रियता का। चॉकलेट की सबसे प्रमुख सामग्री है कोको, और कोको के बिना चॉकलेट का कोई अस्तित्व नहीं। कोको दरअसल कोको पेड़ के बीजों से मिलता है। 3 प्रकार के कोको के पेड़ हैं, कोरियोलो, फॉरेस्टेरो और ट्रिनिटेरियो। क्रियोलो के बीजों में सफेद बीज पत्र या कोटिलेडन्स होते हैं और इनका स्वाद हल्का होता है, परंतु इनकी पैदावार कम होती है। अधिकतर कोको फॉरेस्टेरो किस्म की है तथा ट्रिनिटेरियो बाकी दोनों का संकर यानी हाइब्रिड है। कोको के फूल बीज बोने के 2 साल बाद खिलते हैं और उन फलियों को परिपक्व होने में 140 से 160 दिन यानी लगभग आधा साल लगता है। हर फली में करीब 25 से 45 बीज होते हैं जो कि अपने गूदे में ही रहते हैं। फसल की कटाई के बाद मिलने वाली फलियों को अगली प्रक्रिया की ओर ले जाने से पहले लगभग 2-3 दिन यूं ही रखा जाता है। इसके बाद फलियों को खोलकर उनमें से बीजों को निकाला जाता है, पर इन बीजों का स्वाद चॉकलेट जैसा नहीं होता। चॉकलेट का चॉकलेटी स्वाद पाने के लिए इन बीजों को किण्वित यानी फर्मेंट किया जाता है। किण्वीकरण से बीजों का कड़वापन कम होता है और वे फैलने या खुलने लगते हैं। उचित किण्वीकरण अंतिम चॉकलेट के स्वाद के लिए अनिवार्य है। इस प्रक्रिया को संपन्न होने में लगभग 1 हफ्ता लगता है। किण्वित बीजों को सुखाकर उनसे चॉकलेट बनाने के लिए भेज दिए जाते हैं। अब वास्तव में शुरू होती है चॉकलेट बनाने की लंबी एवं जटिल प्रक्रिया। सूखे बीजों को साफ करके उन्हें भूना जाता है। भूनने पर सख्त छिलके या ढांचे टूटने तथा हल्के होने लगते हैं, जिससे इन्हें निकालना आसान हो जाता है। इसके बाद मिलने वाले कोमल हिस्से को निब कहा जाता है। निब को तरल या लिक्विड बनाने के लिए उसको अच्छे से कूटा जाता है। इस तरल को सांचों में डाला जाता है, जिसमें यह ठंडी होकर चॉकलेट की टिकिया में परिवर्तित हो जाती है, जो कि कड़वी और मिठास रहित होती है। इन टिक्कियों को तब तक दबाया जाता है जब तक उनमें से कोको बटर निकल नहीं जाता। इसके बाद चॉकलेट के सबसे महत्वपूर्ण अंग कोको बटर को छलनी की मदद से निकाल दिया जाता है। इसे इकट्ठा करके चॉकलेट बनाई जाती है जो हम वास्तव में खाते हैं। कोको बटर की टिक्की के ठोस हिस्से को पीसा जाता है, जिससे कि वह चूरे या पाउडर में तब्दील हो जाती है। इस कोको पाउडर को डेयरी या गौशाला और बेकरी में भेजा जाता है, जहां इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के दुग्ध एवं आटे के व्यंजनों को बनाने में किया जाता है। आखिरी में बनाई जाती है वे चॉकलेट जो हम खाते हैं, और इस प्रक्रिया को कहते हैं कॉन्चिंग। कॉन्चिंग से चॉकलेट नरम, मुलायम, मीठी एवं मुंह में घुलने योग्य बन जाती है। शक्कर, कोको बटर, कोको पाउडर और अन्य सामग्रियों को एक साथ मिलाकर समतल किया जाता है। इस मिश्रण को सांचे में डालकर ठंडा किया जाता है। ठंडा एवं ठोस होने के बाद चॉकलेट को पैक करके बाजार में भेज दिया जाता है। सामान्यतः चॉकलेट में 50% शक्कर होती है, जो कि अधिकतर सुक्रोज या दूध में मौजूद लैक्टोज होती है, जो कि दूध या मिल्क चॉकलेट में होती है। अधिकतम लोगों को लगता है कि चॉकलेट एक ठोस वस्तु है, क्योंकि लोग उसका सेवन उसी रूप में करते हैं, पर वास्तव में चॉकलेट तब ही जमाई जाती है जब उसे पैक किया जाता है, ताकि उसे फैक्ट्रीज और दुकानों में भेजा जाए। चॉकलेट हमें इंस्टेंट एनर्जी यानी तुरंत ऊर्जा देती है, और थोड़े समय के लिए ही सही हमारी भूख को तुरंत शांत कर देती है, क्योंकि इसका आधा भाग चीनी से युक्त होता है। आर्कटिक या एंटार्कटिक जैसी जगहों पर खोज के लिए जाने वाले वैज्ञानिकों के लिए या फिर आपातकालीन स्नैक्स के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें खाद्य से जुड़े सबसे जरूरी तत्व यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और कुछ जरूरी धातु यानी मिनरल्स होते हैं। आजकल तो मधुमेह यानी डायबिटीज के मरीजों के लिए भी चॉकलेट उपलब्ध है, जो कि वैकल्पिक मिठास यानी अल्टरनेट स्वीटनेस प्रदान करने वाले स्रोत जैसे सॉर्बिटोल से बनाए जाते हैं। चॉकलेट कितनी देर तक नरम रह सकती है, वह कैसे पिघलती है, इससे पता लगता है कि उसकी गुणवत्ता कैसी है। स्टोरेज यानी संग्रहण करने पर ये गुण परिवर्तित हो सकते हैं। आमतौर पर कोको बटर सफेद ऊपरी परत बना लेती है, इसे ब्लूमिंग कहते हैं, जिस वजह से चॉकलेट का टेक्सचर बदल जाता है और भुरभुरी सी हो जाती है, जिसे पसंद नहीं किया जाता। तो इस अंग में हमने देखा कि कैसे थोड़ी कड़वी, थोड़ी मीठी, थोड़ी नरम कोको चॉकलेट का रूप ले लेती है और हमारे दिलों पर राज कर रही है।
मीठी मीठी लालसा का रहस्य। अगर चॉकलेट लोगों को अपना दीवाना न बना सके तो ये चॉकलेट है ही नहीं। बच्चा हो या बुजुर्ग, हर कोई इसका आदी है। आश्चर्य की बात तो यह है कि चॉकलेट के साथ जो मिठास आज जुड़ी हुई है, वह कुछ सालों पहले तक इसके साथ थी ही नहीं। बहुत समय पहले जब चॉकलेट को यूरोप और अन्य देशों में जाना भी नहीं जाता था, तब चॉकलेट पे मीठा भी नहीं था। तब यह खट्टा, कड़वा, तीखा तथा गर्म एक सूप के मिश्रण जैसा था। चॉकलेट ड्रिंक बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे पहला नुस्खा मायन काल से है। उस समय कोको बीन्स को मक्का और मिर्च के साथ पीसकर पिया जाता था। कोलंबस ने मध्य अमेरिका में इस तरह के कड़वे पेय को इतना लोकप्रिय होने पर आश्चर्य व्यक्त किया। लेकिन आज चॉकलेट मिठास का पर्याय है। उदाहरण के लिए टीवी पर उन विज्ञापनों को देखें जो चॉकलेट के लिए आपको ललचाते हैं। इनका मूल उद्देश्य ही है लोगों के मन में चॉकलेट खाने की इच्छा जगाना। लोग चॉकलेट के लिए इतनी अधिक लालसा या इच्छा क्यों रखते हैं, यह भी एक रहस्य की बात है। क्या है इसमें जो लोगों को इसके पीछे पागल कर देता है? इस विषय पर बहुत से विचार और शोध उपलब्ध हैं। क्या यह एक ड्रग की तरह है जो लोगों को अपना आदि बना देती है, या सिर्फ एक स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ है जिसे लोग बार बार खाना पसंद करते हैं? चॉकलेट थियोब्रोमा कैकाओ पेड़ के बीजों से बनाई जाती है। वनस्पति शास्त्री यानी कि प्लांट बॉटनिस्ट लिनियस ने बिना कारण के इस पौधे का नाम थियोब्रोमा रखा है, जिसका अर्थ है देवताओं का भोजन। कहावतों के अनुसार पेरू में कुछ 4000 साल पहले से इस पौधे को उगाया जा रहा है, लेकिन इसके बीज से बने पेय को केवल राजाओं और देवताओं के लिए ही उपयोग किया जाता था। वास्तव में उस समय यह इतना प्रचलित था कि बाद में लंबे समय तक कोको बीन्स को मुद्रा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता। भूरे झागदार इस पेय को कई अद्भुत प्रभावों के लिए भी जिम्मेदार माना गया है, लेकिन सबसे अच्छा ज्ञात प्रभाव है मनोस्थिति, का हल्का हो जाना यानी कि मूड लाइटनिंग। अध्ययन कहता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक चॉकलेट खाने की इच्छा रखती हैं। हालांकि इसका कारण कोई नहीं जानता और ऐसा कहा जाता है कि बाकी दिनों की तुलना में महिलाओं को मासिक धर्म से पहले और मासिक धर्म के दिनों में चॉकलेट खाने की इच्छा कुछ अधिक होती है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वे दिन निराशाजनक होते हैं और चॉकलेट से राहत व खुशी मिलती है? पर क्यों? इस प्रभाव के लिए चॉकलेट में उपस्थित लगभग हर घटक को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। चॉकलेट में कार्बोहाइड्रेट, खनिज, प्रोटीन और कुछ अद्वितीय यानी कि यूनिक रसायन जैसे कि कैफीन और थियोब्रोमिन होते हैं। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को बड़ी मात्रा में मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। अन्य खाद्य पदार्थों की तुलना में चॉकलेट में सर्वाधिक मैग्नीशियम होता है। जिस तरह कॉफी में मौजूद कैफीन मूड को अच्छा और खुश रखता है, उसी तरह क्या चॉकलेट में मौजूद कैफीन लोगों की लालसा के लिए जिम्मेदार है? क्या चॉकलेट में उपस्थित यह कैफीन और भी ज्यादा चॉकलेट के लिए उकसाता है? पता नहीं, पर ऐसा हो भी सकता है। वैसे कॉफी में उपस्थित कैफीन तो लोगों को एक और कॉफी पीने के लिए निश्चित रूप से नहीं उकसाता। जब लोगों का मूड खराब होता है तो वे अक्सर मिठाई की तलाश करते हैं। क्या यही कारण है कि लोग चॉकलेट के लिए तरसते हैं? लेकिन लोग मूड खराब होने पर ही नहीं बल्कि खुशी में भी चॉकलेट चाहते हैं। वास्तव में हमारा दिमाग उन चीजों की तलाश करता है जो एंडोर्फिन नामक रसायनों के स्राव को प्रेरित करते हैं। एंडोर्फिन मस्तिष्क द्वारा उत्पादित प्राकृतिक दर्द निवारक है। आनंदमाइड एक ऐसा ही एंडोर्फिन है। यह शरीर द्वारा नशीली दवाओं का सेवन करने पर स्रावित होता है। हैरानी की बात यह है कि चॉकलेट ही एकमात्र ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें आनंदमाइड है। क्या यही कारण है कि चॉकलेट खाने के बाद लोगों को बड़ा आनंद मिलता है? विज्ञान ने कारण की जांच करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी यह सुनिश्चित नहीं है कि कौन सा तत्व हमें अधिक चॉकलेट खाने के लिए उकसाता है। चॉकलेट में उपस्थित एक तत्व या सारे के सारे, या फिर स्पष्ट रूप से हम सिर्फ इसके स्वाद और रेशमी मुलायम मीठे स्वभाव को पसंद करते हैं। जो भी हो, चॉकलेट का तो हमेशा स्वागत है, कहीं भी कभी भी।
चॉकलेट की एक मीठी सी कहानी। आखिर चॉकलेट का प्रवेश हमारी दुनिया में कब हुआ, जानेंगे इस अंक में। चॉकलेट का इतिहास लगभग 1900 ईसा पूर्व तक का माना जाता है, जब मेसोपोटामियन सभ्यता का राज चलता था। प्रमाण यह बताते हैं कि पुराने मीजो अमेरिकन्स ने मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वर्षावन यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाने वाली कोको के पौधों को उगाया। असल में चॉकलेट का सेवन पेय के रूप में किया जाता था, जिसे नहावती यानी कड़वा पानी कहा जाता था। इस पेय को मसालों के साथ मिश्रित करके परोसा जाता था। चॉकलेट शब्द की उत्पत्ति एजटेक शब्द ज़ोकाटल से हुई है, जिसका अर्थ है कोको के बीजों से मिलने वाला कड़वा पेय। एजटेक्स का मानना था कि चॉकलेट ईश्वर का उपहार है। एक जमाने में ये बीज इतने मूल्यवान थे कि मध्य अमेरिका की कुछ जातियां और कबीले इसका प्रयोग मुद्राओं के रूप में करते थे। ऑलमेक, मायन और एस्टेक सभ्यताओं के लिए चॉकलेट एक स्फूर्तिदायक, मनोदशावर्धक और उत्प्रेरित करने वाला पेय है, जिस कारण उनके बीच यह मान्यता प्रचलित हो गई कि चॉकलेट में रहस्यात्मक और आध्यात्मिक गुण भी हैं। मायन सभ्यता में तो कोको देव भी थे, जिनकी वो आराधना करते थे। आध्यात्मिक मूल्य के कारण कोको रस केवल राजाओं, शूरवीरों, पुजारियों और श्रेष्ठ माने जाने वाले जनों को ही महत्वपूर्ण एवं पवित्र समारोहों में दिया जाता था। कोको गर्म और वर्षाकालीन उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिक क्षेत्रों जैसे आइवरी कोस्ट, घाना, इंडोनेशिया, ब्राजील, नाइजीरिया और कैमरून में उगती है। विश्व में प्रति वर्ष कोको की उपज लगभग 30 लाख टन है। लैटिन में कोको के पेड़ को थियोब्रोमा कहा जाता है, जिसका अर्थ है देवों का भोजन। इसी से कोको के सक्रिय संगठक थियोब्रोमा के नाम की उत्पत्ति हुई। थियोब्रोमाइन और थियोफाइलिन कैफीन की तरह ही एल्कलॉइड्स होते हैं। 17वीं सदी तक चॉकलेट को उत्प्रेरक या कामोद्दीपक माना जाता था और इसकी बिक्री दवाखानों में स्वास्थ्यवर्धक पेय के रूप में होती थी। डच रासायनिक वैज्ञानिक कॉनराड जोहान्स वॉन हॉटन ने 1828 में कोको प्रेस की खोज की, जिसके कारण चॉकलेट बनाने की प्रक्रिया में तीव्र एवं अच्छा बदलाव आया। इस प्रेस की मदद से भुने हुए कोको के बीजों से वसा युक्त कोको बटर को बड़ी आसानी से अलग किया जाने लगा। बचने वाले सूखे केक या टिक्की को अच्छे से मसल कर चूरे में बदलकर तरल और अन्य सामग्रियों के साथ मिलाकर सांचे में डाल दिया जाता था, जिसके ठोस होने पर वह खाने एवं आसानी से पचने योग्य चॉकलेट में बदल जाती थी। चॉकलेट जितना दबदबा पूरे विश्व में किसी अन्य खाद्य पदार्थ या मिठाई का नहीं है। हालांकि भारत में चॉकलेट का इतिहास नया ही है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में चॉकलेट की बिक्री ही नहीं होती थी। इसका सेवन केवल अंग्रेजी अफसर किया करते थे और ये चॉकलेट्स इंग्लैंड से मंगाई जाती थी। 1947 में जब सबसे पहले चॉकलेट कारखाने की स्थापना भारत में हुई, उसी के बाद से यह हमारे देश में भी उपलब्ध होने लगी। कोको की खेती तो और भी बाद में यानी 1965 से ही शुरू हुई। तब से हमारा देश कोको की कृषि कर रहा है। आज की तारीख में भारत सबसे अधिक चॉकलेट उत्पादकों की श्रेणी में 17वें स्तर पर है। प्रतिवर्ष हमारा देश 17,000 टन से भी अधिक चॉकलेट का उत्पादन करता है। भले ही हम भारतीयों ने चॉकलेट का सेवन थोड़ी देर से शुरू किया हो, पर लगता है चॉकलेट से हमारा रिश्ता पुराना है और इसके प्रति हमारा प्यार ये तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। चॉकलेट सिर्फ एक से दिल नहीं भरता। विज्ञान चॉकलेट की रेशमी कोमलता का। श्रोताओं, विली वोंका का नाम सुना है आपने, या विश्व प्रसिद्ध वोंका चॉकलेट फैक्ट्री का? क्या आपको चार्ली और चॉकलेट फैक्ट्री की याद है, या फिर आप यही सोच रहे हैं कि मिस्टर वोंका और चार्ली यहाँ साइंस पॉडकास्ट से कैसे संबंधित हैं? जवाब बहुत आसान है, चॉकलेट। जी हाँ, चॉकलेट आधुनिक युग में प्रेम और वात्सल्य का दूसरा नाम, गर्मजोशी से भरी प्रसन्नता, ऐसी गलती जिसे आप खुले दिल से स्वीकारते हैं कि हाँ, खाई है मैंने एक बार में इतनी सारी चॉकलेट्स। वैसे आज आपके साथ चॉकलेट के बारे में चर्चा करने का एक महत्वपूर्ण कारण है, और हमें यकीन है कि यह जानकारी जितना आपके दिमाग में जाएगी उतनी ही आपकी जीभ को भी ललचाएगी। आज हमें अपने आसपास विभिन्न स्वाद, आकार और अलग अलग बनावट की बहुत सारी चॉकलेट्स देखने को मिलती हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे चॉकलेट्स बिल्कुल पसंद ना हो। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय था जब चॉकलेट इस तरह से हाथों हाथ नहीं बिकते थे जैसे कि आज? हाँ, 1889 से पहले निर्मित चॉकलेट बार मुश्किल से बेचे जाते थे, क्योंकि वे चबाने में किरकिरे और खाने में भी कठिन होते थे। उस समय कोको और अन्य ठोस अवयवों को मिश्रित कर खुरदुरे, अनियमित गांठों के रूप में किरकिरी, कठोर और अनाकार चॉकलेट्स बनाई जाती थी। कई कॉन्फेक्शनरों ने फिर लंबे समय तक काम करके इन प्रक्रियाओं में सुधार करने का प्रयास किया। 1889 में स्विस कॉन्फेक्शनर रडोल्फ लिंड मैदान में उतरे और लगभग एक जादुई प्रक्रिया से, जी हाँ, जादुई प्रक्रिया से ही उन्होंने सबसे मुलायम चॉकलेट बनाई। इस जादुई प्रक्रिया को चॉकलेट कॉन्चिंग कहा जाता है। कॉन्चिंग से चॉकलेट में स्मूथनेस यानी कि कोमलता और जायका पैदा होता है, और फिर इस बदलाव ने पूरी दुनिया में चॉकलेट का मानो जुनून ही ला दिया। यद्यपि हम जानते हैं कि चॉकलेट दुनिया में सबसे लोकप्रिय मिष्ठान है, लेकिन अभी भी इसके साथ बहुत से रहस्य जुड़े हुए हैं। सबसे मुख्य रहस्य तो यह है कि कॉन्चिंग कैसे चॉकलेट को नरम और मुलायम बना देती है। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और मार्स चॉकलेट यूके लिमिटेड के सहयोग से यूनाइटेड किंगडम में द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के शोधकर्ता इसका संभावित कारण लेकर सामने आए हैं। उन्होंने 140 साल पुरानी मिश्रण तकनीक पर गहन अध्ययन और शोध के बाद कॉन्चिंग प्रक्रिया के पीछे की भौतिकी का खुलासा किया है, जिसके कारण चॉकलेट रेशमी तथा पिघली हुई बनती है। चॉकलेट कॉन्चिंग प्रक्रिया में शुष्क और खस्ता पदार्थ जैसे कि चीनी, दूध के ठोस पदार्थ और कोको को कई घंटे तक मिलाया जाता है, जिससे कि वो एक तरल का रूप ले ले, और इसी तरल को हम तरल चॉकलेट यानी कि लिक्विड चॉकलेट के रूप में जानते हैं। यह कॉन्फेक्शनरी उद्योग में एक प्रसिद्ध और बुनियादी औद्योगिक प्रक्रिया है, जो कि निर्माण कंपनियों द्वारा बनाए जाने वाले सीमेंट मिश्रण के बनने की प्रक्रिया के समान है। अपने तरल रूप में होने पर भी ज्यादा से ज्यादा ठोस सामग्री को प्राप्त करना ही कॉन्चिंग का प्रमुख लक्ष्य है। वसा की मात्रा जितना अधिक होती है, कॉन्चिंग उतनी ही मुश्किल हो जाती है। शोधकर्ताओं के अनुसार कॉन्चिंग प्रक्रिया दो चरणों में होती है। सबसे पहले चरण में सभी सूखी सामग्रियों को एक साथ मिलाया जाता है और दूसरे चरण में कोकोआ बटर या अन्य कोई वसा और दूध जैसे तरल पदार्थ मिलाए जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान बड़ी बड़ी गांठें या लंप्स बहुत महीन कणों में टूट जाते हैं। जब कण का आकार 10 माइक्रोन से 50 माइक्रोन तक हो जाता है तो तरल चॉकलेट आसानी से बहती है। 1 मिलीमीटर में हम ऐसे 20 से 100 कणों को भर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्चिंग प्रक्रिया के दौरान दूध जैसे तरल पदार्थ के कारण कणों के बीच में घर्षण यानी कि फ्रिक्शन कम हो जाता है। घर्षण में यह कमी चॉकलेट को धीरे धीरे मुलायम बनाती है। रेशमी और मुलायम हो जाने के बाद मिश्रण करने के लिए अब बहुत ही कम बल यानी कि फोर्स की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के अनुसार कॉन्चिंग प्रक्रिया एक मध्यस्थ प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से कठोर ठोस एक आसानी से बहने वाले तरल में परिवर्तित हो जाता है। जैसे जैसे मिश्रण जारी रहता है, दाने का आकार घटने की बजाय बढ़ता ही जाता है। तरल पदार्थों के मिलाने के बाद भी यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि तरल एक ऐसा कॉम्पैक्ट पेस्ट नहीं बन जाता जो कि आसानी से प्रवाह न कर सके। बस एक जादू की ही तरह तरल के शेष अंतिम भाग मिलने पर अब यह चॉकलेट एक ग्लॉसी तरल में बदल जाती है, जिसे ढांचों में डाला जा सकता है। विज्ञान के जटिल मिश्रण में छिपा हुआ यह एक सीधा सा तथ्य है। संक्षेप में कहें तो अधिक वसा का मतलब आसान तरल प्रवाह नहीं है। आसान तरल प्रवाह के लिए तो वास्तव में मिश्रण की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों की शोध की सफलता तथा कौशल के माध्यम से चॉकलेट के निर्माण की प्रक्रिया को और भी बेहतर बनाया जा सकता है, जैसे कि पूर्ण मशीनीकरण तथा कम वसा वाली चॉकलेट का निर्माण। तो क्या हम और एक रूप पर जोड़ दें? ओह, इतना रहस्यमयी जैसे कि चॉकलेट मिश्रण। तो हो जाए और एक चॉकलेट। तो प्रिय श्रोताओं, यह था थाली टेल्स का 8वां पाक्षिक अंक। आशा है आप सभी ने इसका आनंद उठाया होगा। इसकी पटकथा लिखी है सुश्री नम्रता वारकेकर, डॉक्टर जे आर मंजुनाथ, सुश्री अजना एवं श्री कोलेगल शर्मा ने। इसका हिंदी रूपांतरण किया है सुश्री प्रतिभा एवं सुश्री वंदना पद्मनाभन ने, तथा अपनी आवाज दी है सुश्री प्रतिभा, सुश्री वंदना पद्मनाभन तथा सुश्री सुरुचि ने। थाली टेल्स CSIR CFTRI मैसूरु द्वारा निर्मित और निशुल्क वितरित की जाने वाली पाक्षिक ऑडियो पत्रिका है। आप थाली टेल्स को किसी के साथ भी साझा कर सकते हैं। श्रोतागण खाद्य तथा इससे जुड़े मुद्दों पर अपने प्रश्न एवं सुझाव व्हाट्सएप के माध्यम से सीधा 9449120618 पर भेज सकते हैं, या सोमवार से शुक्रवार तक 08212515910 पर कॉल भी कर सकते हैं। थाली टेल्स के आगामी अंकों में आपके प्रश्नों के उत्तर देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेंगे। नमस्कार।